पुलकित सिंह, समर्थ सिंह, अंशुमन सब के सब शतरूपा देवी के स्वागत के लिए बाहर खड़े थे, लेकिन अचानक आई हुई आंधी पानी से भी तेजी से अंदर गए। विकल्प भी इन्हीं लोगों के साथ तेजी से आगे बढ़ा और वे लोग मुख्य दरवाजे से होते हुए ऊपर शतरूपा देवी के कमरे की तरफ बढ़ चले थे। पीछे पीछे धीरे धीरे शतरूपा देवी का स्ट्रेचर अभी हॉल में आ रहा था। नव्या जी और दामिनी जी भी अंदर आ चुकी थीं, लेकिन इन सभी लोगों को आगे भेजकर विक्रम जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर आया, उसने आंखों में आंसू भरी हुई आशी को सामने खड़े पाया था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? एक पल के लिए तो विक्रम समझ नहीं पाया था, लेकिन जब उसने आशी की नज़रों का पीछा किया तो दूसरे पल उसे सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसने धीरे से आशी का हाथ पकड़कर खींचा और एक साइड से अपने में समेट लिया। कितना छोटा सा चिड़िया की तरह दिल रखती हो यार, अपनी इस मेहनत को बर्बाद होते देखकर दुखी हो रही हो? प्यार से आशी के बालों को सहलाते हुए विक्रम ने पूछा। आशी बिलकती हुई उसके सीने से लगी खड़ी थी। चलो दिल छोटा मत करो, मैंने तुम्हारी रंगोली दरवाजे के बाहर से ही देख ली थी और तुमने सच में रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनाई थी। अब आज के लिए दुख मत करो, जिस दिन बड़ी मासा ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगेंगी उस दिन मैं खुद तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी रंगोली सजाऊंगा, उसको रंगों से भरूंगा और उस दिन हम इस महल में एक जोरदार उत्सव करेंगे। आशी ने अनिश्चितता से विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम की आंखों में उम्मीदों के दिए जल रहे थे, जिसको देखकर आशी मुस्कुरा दी और वैशाली जलकर अंगार हो चुकी थी। उसके क्रोध का बढ़ना था कि बाहर बारिशों की रवानी में और तेजी हो गई थी। राजगढ़ की सीमा में एंटर करते हुए अखिल प्रताप ने भी इस तूफानी बारिश के कहर को अच्छी तरह से महसूस किया था। ये क्या हो रहा है? ये बारिश उन्हें बहुत कुछ याद दिला रहा था, खासकर वो दिन जब 16 साल पहले उन्होंने राजगढ़ छोड़ा था। इसी तूफानी बारिश में उन्हें शतरूपा देवी ने महल से धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज भी अच्छी तरह से उनके कानों में शतरूपा देवी के कहे हुए अंतिम शब्द गूंज रहे थे। हमें हमारे भाई से तो बात करने दीजिए बड़ी मासा, अखिल प्रताप बोल रहे थे, जिन्हें शतरूपा देवी के इशारे पर पहले ही दामिनी जी लेकर अंदर जा चुकी थीं। अगर आप सच में विक्रम प्रताप से प्यार करते हैं और खुद को उनका बड़ा भाई कहते हैं तो अपना मनहूस साया लेकर इस महल और विक्रम प्रताप की जिंदगी से दूर हो जाइए, क्योंकि आपका साया जिस जिस इंसान पर पड़ा है आपने उसको निगल लिया है। ये आप क्या बोल रही हैं बड़ी मासा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमारे भाई को हमारी जरूरत है। आपके भाई को आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, वरना हम आपको इस महल में क्या, इस दुनिया में भी रहने नहीं देंगे। शतरूपा देवी ने उन्हें महल से बाहर धक्का दे दिया था और साथ ही महल के बाहर मौजूद आदमी को इशारा किया कि वो अखिल प्रताप को बाहर उठाकर फेंक दें। अखिल प्रताप तो बिल्कुल हैरान रह गए थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी मासा, आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर हमें हमारे भाई ने बुलाया तो फिर हमें यहाँ आने से और हमारे अधिकारों को लेने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप भी नहीं। गुस्से से कहते हुए अखिल प्रताप वहां से निकल पड़े थे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। जेब में केवल कॉटेज की चाबी थी और शरीर पर पहने हुए कपड़े, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वकील साहब और घर के लोग तो महल में शतरूपा देवी को समझने और उनसे बहस में ही लगे थे, पर अखिल प्रताप उसी तूफानी बारिश में निकल गए थे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें ध्यान आया कि उनकी जेब में कॉटेज की चाबी है। ये कॉटेज राजमहल से अच्छी खासी दूरी पर था, पैदल तो लगभग एक घंटे का रास्ता था, पर कॉटेज में रात बिताई जा सकती थी। कल सुबह वापस वो अपने हॉस्टल के निकल जाएंगे, ये सोचते हुए उन्होंने अपने कदम कॉटेज के रास्ते की तरफ ले लिए। अंधेरा गिरने को आया था, वो तेजी से अपने रास्ते पर चले जा रहे थे कि अचानक से दो तीन गाड़ियों की हेडलाइट उनके ऊपर चमकी। वो किनारे हो गए, लेकिन उन गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और उसमें से निकलकर कुछ हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। क्या सोच रखा था कि राजगढ़ के राजा तुम बनोगे? राणा बनने चले थे, अब इन राणा सा की लाश यहाँ जंगल के राणा शेर सिंह खाएंगे। हमलावर अखिल प्रताप को घेरते हुए उन्हें जान से मारने के लिए धमका रहे थे। तो बड़ी मासा ने हमें इस तरह से मरवाना चाहा है ताकि रियासत का एक दावेदार खत्म हो जाए? हमलावरों को कुछ उलझते कुछ भागते हुए अखिल प्रताप का दिमाग सवाल कर रहा था। आदमी संख्या में अधिक थे और अखिल प्रताप अकेले, मुश्किल से 17 या 16 साल के लड़के। भगवान जाने उन लोगों के पास क्या क्या हथियार थे। स्टिक, डंडे और कीचेन तो सामने दिख रहे थे, अगर बंदूक भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में उन लोगों से उलझना कोई समझदारी नहीं थी। उन्होंने इसी तूफानी बारिश का फायदा लेकर यहाँ से भागना शुरू कर दिया और नियति की लीला थी कि आज इसी तूफानी बारिश में वो यहाँ लौट भी रहे थे, गाड़ी की खिड़की से इन बरसती हुई बूंद को देखते हुए। इन सब चीज़ों को याद करते हुए अखिल प्रताप अपने ही सोच में गुम थे। तो अपने कमरे में वापस आकर सामने खुली हुई खिड़की से इन बारिश की बूंद को देखते हुए शतरूपा देवी भी इन्हीं दिनों को याद कर रही थी। इधर अखिल प्रताप के गायब होते ही प्रतापगढ़ में हलचल मच गई थी। उन पर हुए हमले के निशान कुछ चश्मदीदों के कारण हवा की तरह फैल गई थी। ये दुनिया की बहुत पुरानी आदत है कि चिंगारी एक छोटी सी होती है लेकिन हवा के कारण आग बहुत तेजी से फैलती है। इस तरह से उस तूफानी रात में किसी ने क्या देखा था क्या नहीं देखा था ये मायने नहीं रखता था, पर एक में दो जोड़कर दबे दबे सबके कानों तक ये बात पहुंच गई थी कि शत्रुपा देवी ने अखिल प्रताप को मरवाकर फेंकवा दिया है, ऐसी जगह दफना दिया है जहां से उनकी लाश मिलना भी मुश्किल है। ये काम करने वाले गांव के ग्रामीण तो थे ही, साथ में बुंदेला रियासत के छुपे हुए पुराने दुश्मन भी थे जो इस आग को हवा दिए जा रहे थे, और अखिल प्रताप की गुमशुदगी और उस रात शत्रुपा देवी के साथ हुई बात इस बात का प्रमाण थी। लेकिन शत्रुपा देवी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है। पहली बार वकील साहब शत्रुपा देवी के अगेंस्ट में आमने सामने खड़े हो गए थे। जाइए, जो जी में आए सो कर लीजिए, लेकिन जो काम हमने नहीं करवाया उसका इल्ज़ाम हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। पर हमें तो हैरानी आप पर हो रही है कि आप राजगढ़ के नमक का फर्ज इस तरह से अदा कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमने आपका नमक खाया है, पर आपके नमक का कर्ज केवल आप तक नहीं, हमारे दोस्त और इस रियासत के राणा अभिमन्यु प्रताप के प्रति भी है। हम उनके बेटे को जरूर खोजेंगे और उन्हें उनका हक दिलवा कर रहेंगे। वकील साहब बोले, जरूर खोजिए और मिल जाएगा तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हमने उन पर कोई हमला नहीं करवाया, नहीं उन्हें मरवाया है। लेकिन उन्हें भी ये बता दीजिएगा कि हम अपने जीते जी उन्हें इस रियासत में आधा हिस्सा तो क्या, एक टूटी झोपड़ी भी नहीं देने वाले हैं। शत्रुपा नेवी स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए बोली। बात क्या थी कोई नहीं जानता था, लेकिन एक तरह से अखिल प्रताप के मरने की खबर पूरे राजगढ़ में फैल गई थी, और दबी दबी आवाज में ये भी चर्चा थी कि अखिल प्रताप को शत्रुपा देवी ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और विक्रम प्रताप का रास्ता साफ करने के लिए मरवाया है।
इधर विक्रम बार बार अखिल प्रताप के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था तो वो क्या देता, और शत्रुपा देवी के दबाव के कारण इस महल में अखिल प्रताप का नाम लेना भी गुनाह हो गया था। पर विक्रम प्रताप की दुनिया अब केवल इस महल तक सीमित नहीं थी। स्कूल जाते थे तो कहीं न कहीं से कोई हवा उनके कानों तक पहुंच जाती थी कि माता पिता के साथ उनके भाई साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि स्पष्ट रूप से तो अभी कोई शत्रुपा देवी का नाम नहीं ले रहा था। पर विक्रम प्रताप से उनके महल के अंदर की खबर सबको चाहिए थी। घर आकर जब वो शत्रुपा देवी से इस बारे में पूछते थे तो शत्रुपा देवी बिल्कुल परेशान सी हो जाती थीं। वो इस चीज़ को समझती थीं कि कभी ना कभी उनके किए हुए कर्म और ना किए हुए भी कर्म विक्रम के कानों में यहाँ रहने पर पड़ेंगे ही, और दूसरे में वो महल का श्राप। कहीं किसी ने इस श्राप के बारे में विक्रम प्रताप से बताया और अभिमन्यु प्रताप की तरह विक्रम प्रताप भी इसी रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा। तीसरे में विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला को इस पूरे राजगढ़ रियासत को संभालने लायक बनाने की जिम्मेदारी भी अब शत्रुपा देवी के कंधों पर थी। देश की राजनीति से लेकर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी बदलाव हो रहा था, और उन सब के साथ अपनी रियासत को खड़ा करने का भी दबाव था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि शत्रुपा देवी इन सब चीज़ों से घबरा गई थीं। ऐसे में काफ़ी सोच विचार कर उन्हें सबसे सीधा और उचित रास्ता यही लगा कि विक्रम प्रताप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, जहाँ इस महल की तो क्या, इस देश की भी हवा उनको छू कर ना गुजरे। और इसी तरह से विक्रम प्रताप को उन्होंने समर्थ सिंह के बेटे विकल्प के साथ पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। विक्रम प्रताप जाना नहीं चाहते थे, खुद शत्रुपा देवी का मन भारी हो रहा था, बेटे की अंतिम निशानी तो बस यही बच गए थे। बेटे के जाने के बाद उनके पास अपना कहने के लिए बचा ही कौन था, लेकिन किसी तरह से दिल को कड़ा करके उन्होंने ये फैसला ले लिया था। इधर वकील साहब ने अखिल प्रताप की खोज में दिन रात एक कर दिया था, और तभी उन्हें पता चला कि विक्रम प्रताप अपने हॉस्टल में लौट चुके हैं। बिना किसी को इस खबर की भनक लगे बिना वकील साहब वहीं उनसे मिलने आए थे और उनसे बात भी की थी। वो चाहते थे कि अखिल प्रताप राजगढ़ लौट जाएं तो वकील साहब उनका अधिकार दिलवाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन अखिल प्रताप को राजगढ़ की प्रॉपर्टी पर तो अपना कोई अधिकार नहीं चाहिए था। उन्हें तो बस अपने भाई से प्रेम था जो कि अब न्यूयॉर्क जा चुका था, इसलिए वो हिचक रहे थे। इस बंटवारे का क्या तुक बनता है जब ना ही हम बालिग हैं और ना ही विक्रम, हम दोनों में से कोई भी अपनी रियासत को संभालने के लायक नहीं है। जब विक्रम 18 या 21 साल के हो जाएंगे और कानूनी रूप से ये बंटवारा आलोक में आएगा तब हम खुद विक्रम से इस मैटर पर बात कर लेंगे, तब तक के लिए आप हमारी संपत्ति और हमारा रियासत देखते रहिएगा, अखिल प्रताप बोले। पर अभी आपको वहां पर जाना चाहिए, आपके ना रहने पर आपकी सारी संपत्ति का उपभोग शत्रुपा देवी कर रही हैं। तो करने दीजिए, वैसे भी ये सब कुछ तो उन्हीं का है, उनके बाद ही तो हम लोग का होगा, अखिल प्रताप आराम से बोले। तो फिर हमारे लिए क्या आदेश है, वकील साहब ने पूछा। फिलहाल में तो आप हमारे लिए बस एक काम कीजिए, हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था कीजिए, अखिल प्रताप बोले। तो फिर इसका मतलब आपने ये निर्णय ले लिया है कि अब आप राजगढ़ कभी नहीं लौटेंगे, एक तरह से अखिल प्रताप के अघोषित निर्णय को सुन समझकर वकील साहब परेशान हो गए थे। हर हर महादेव।